ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। ईरान और इसराइल में एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के कारण संघर्ष जारी है। इसराइली सेना ने ईरान से मिसाइल हमलों के खतरे का हवाला देते हुए मध्य और दक्षिणी इसराइल में हवाई हमले के सायरन सक्रिय कर दिए हैं। ये घटनाक्रम ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के बीच हुआ है। पिछले 10 दिनों में मध्य इसराइल को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें उत्तरी बंदरगाह शहर हाइफा पर भी बार बार हमले हुए हैं। इस बीच ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि उसकी सेना परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हमलों के जवाब का समय, प्रकृति और मात्रा का निर्धारण कर रही है। इससे पहले फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हवाई हमले की प्रतिक्रिया में ईरान की संसद ने एक मत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हॉर्मुज विश्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण तेल और गैस के लिए नौवहन मार्ग है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान पर इजरायली हमलों में अमेरिका के शामिल होने के बाद एक वक्तव्य में कहा कि इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने अत्यधिक चौकसी बरतते हुए इस क्षेत्र में सैन्य बलों को तैनात किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी आज रूस पहुंच चुके हैं। वे अमरीकी सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुतरश ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान शांति की अपील की।
We face a stark choice. One path leads to wider war, deeper human suffering and serious damage to the international order. The other leads to de-escalation, diplomacy and dialogue. We know which path is right. And I urge this Council and all Member States to act with reason, restraint and urgency. We cannot and must not give up on peace.
उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना का संकेत दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की वर्तमान सत्ता ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। चार राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव की मतगणना आज की गई। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने निलांबुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के उम्मीदवार आर्यदान शौकत ने 77,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की। गुजरात में विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की, जबकि कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार चावड़ा ने जीत हासिल की। विसावदर सीट भूपेंद्र भयानी के इस्तीफे और कड़ी सीट कर्शन सोलंकी के निधन के बाद खाली हुई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलीफा अहमद ने कालीगंज सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के आशीष घोष को 50,049 मतों से हराया। पंजाब में लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अगस्त 2023 से जुलाई 2024 की अवधि के बीच दिए गए भाषण शामिल हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पुस्तक लोगों को विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल्याणकारी विचारों से अवगत कराएगी। ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी की गई, साथ ही इसका ई संस्करण भी जारी किया गया। राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण रखने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 511 अंक गिरकर 81,897 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 141 अंक फिसलकर 24,972 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।